हमने पिछले हफ्ते जो हमने पिछले प्रोग्राम में जो बात की थी उसमें ये था कि फ़राइज़ क्या होने चाहिए मियाँ बीवी के, और उस पर हमने मर्दों के फ़राइज़ के बारे में पहले गुफ्तगू की थी, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि बीवी के फ़राइज़ के बारे में गुफ्तगू की जाती है और मर्दों के हुकूक़ के बारे में होती है गुफ्तगू। तो थोड़ा सा उसके बारे में हम थोड़ा सा दोहरा
हाँ, हमें
दें
जितना मुझे याद है वो
जी
ये कि हमने बात की थी इस पर कि एक दूसरे का एहतराम बहुत ज़रूरी है।
जी
एहतराम के लिए ये कि ये दो तरफ़ा, यानी ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं इनमें ज़्यादातर, यानी 90% 95% चीज़ें वो हैं कि जो एक दूसरे के लिए हैं। एहतराम, एक दूसरे का एहतराम, शौहर पर वाजिब है बीवी का एहतराम जैसे बीवी पर वाजिब है शौहर का एहतराम। तो यानी एहतराम में ये होता है कि उसके उसके जज्बात का भी एहतराम, और आप उस एहतराम को जाहिर भी करें। मसलन शोहर आ रहा है, होता क्या है हम लोगों के यहाँ कि जब ज़्यादा थोड़ा मानूस हो गए, ज़्यादा नज़दीकी हो गई वो गई, तो फिर वो एहतराम वगैरह ख़त्म हो
खत्म हो
जाता है।
जाता है
कोई अगर लेटा हुआ है और मतलब बीवी लेटी हुई है, शोहर आ गया है, शोहर लेटा हुआ है, बीवी आ गई, तो फिर उठने उठने की कहीं
नहीं
कोई
होता है
ये
जी
ना करें। इस एहतराम को शुरू से जो शुरू करें, मतलब अपनी ज़िंदगी का जब आगाज़ करें अज़्दवाजी ज़िंदगी का, उस वक्त से ये शुरू हो और इसको आखिर तक बरकरार रखें, क्योंकि ये बाद में बच्चों की तरबियत में ये चीज़ें मदद करती हैं। फिर जब आप एहतराम करते हैं तो एहतराम वो चीज़ नहीं होती कि आदमी कहे कि भाई बहुत शुक्रिया तुमने एहतराम किया, महसूस करता है
जी
वो एहसास, दिल में जगह बनाता है। और एहतराम के लिए औरतों के, ख़वातीन के और खुसूसन बीवी के लिए, जहाँ चूँकि अर्ज़ करना है
जी
कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं चीज़ें कुछ नोट करके लाई थी इसीलिए
जी
कि बहुत अहम है, कि आप फरमाते हैं कि ताज़ीम व तकरीम नहीं करते बीवियों की मगर अफराद बुजुर्गवार जो होते हैं वो, यानी वो लोग करते हैं जो बुजुर्गवार होते हैं, बीवी की तकरीम बीवी का एहतराम वो करता है, और उनकी तहकीर नहीं करते मगर वो लोग जो पस्त होते हैं, यानी बीवी की तहकीर उसे हकारत से वो करना,
बिल्कुल
उसका एहतराम न करना अल्फाज से भी अंदाज से भी, जो लोग बीवी की तहकीर करते हैं तो उनको रसूलुल्लाह ने पस्त लोग कहा है, शौहर की तरफ से भी बात कर रही। और आपका ही एक और कॉल है कि जिब्राइल हमेशा ख्वातीन की इतनी सिफारिश करते थे कि मैंने सोचा कि मर्द को बीवी को ओह तक कहने का हक नहीं
हक
है।
नहीं
ओह ये क्या कर दिया, अरे ये क्या कर दिया, यानी अरे तक कहने का हक नहीं है। रसूल फरमाते हैं कि जिब्राइल ने इतनी सिफारिश की, जिब्राइल अपनी तरफ से तो सिफारिश नहीं करते थे।
सही बात है
तो एहतराम दो तरफा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस अपने अल्फाज से भी, अपने अंदाज से भी, और अपने दिल की गहराइयों से भी एक दूसरे का एहतराम करें,
जी
और उस एहतराम में जज्बात का एहतराम भी बहुत करें। जज्बात का एक दूसरे के एहतराम में नहीं इस हद तक होना चाहिए कि आप एक दूसरे के वालदैन के लिए हमेशा बहुत शायस्ता बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, बीवी शौहर के लिए, शौहर बीवी के लिए, उसका एहतराम करें, उसके घर वालों का, उसके भाई बहनों का। जिन अल्फाज में आप बात करेंगे वो अल्फाज जो हैं वो एक दूसरे के दिल में जगह बनाने के लिए काफ़ी होते हैं। और ज़रा से किसी चीज़ पे ताना, अरे हमें मालूम है तुम्हारे घर वाले कैसे
कैसे
हैं,
अच्छा
अरे आपके घर वाले मेरे साथ क्या करते हैं, वो तो आपको, ये चीज़ें जो होती हैं, ये
हमेशा
छोटी छोटी चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार निभा देती हैं ज़िंदगी में, दूरियाँ पैदा करके, एक दूसरे के लिए नफ़रत पैदा करके, या उस वक्त जो तकलीफ हो गई वो अगर जो पता नहीं कितने बरसों तक याद रहेगी इंसान
सही
को,
बात है। जबान का जख्म कहते हैं कि
जबान का
हमेशा
जख्म
रहता है
जल्दी भरता नहीं है।
जी
तो एक तो ये हुई कि एहतराम की बात, दूसरे मैंने अर्ज किया था पिछले प्रोग्राम में भी कि जिस चीज को मैंने अहादीस में देखा है, मासूमीन के अकवाल में देखा है, कि मियाँ का बीवी के लिए और बीवी का मियाँ के लिए तज़ीन व आराइश करना बहुत ज़रूरी है।
जी
अपने लिबास में अपने बीवी मेकअप भी करे शौहर के लिए, अच्छी हुलिया में अच्छी शक्ल में उसके सामने आए, तो इसके साथ साथ शौहर का भी ये फ़र्ज़ है
कि वो भी अच्छे हुलिया में आए
अच्छे अच्छी शक्ल में, अच्छे
शक्ल में
लिबास में, अच्छे अच्छे लिबास का ये मतलब नहीं होता कि हमेशा अपने बहुत ही कीमती और साफ़
जी
सुथरे अच्छे खुशबू के साथ, जैसा भी बीवी को मेकअप वो कर सकती है, जिसमें एहसास करती है कि उसका हुस्न निखरा है, उसकी शक्ल बेहतर हुई है, उसमें उसे भी रहना चाहिए, और शौहर को भी इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए। कि बल्कि मैंने एक बहुत दिलचस्प चीज़ देखी,
जी
हमेशा ये सुनते थे नाखून बढ़ाना जो है वो मकरूह है ये,
जी जी
और
जी
ये सब मैंने देखा मासूमीन के अकवाल में कि औरतों को थोड़ा नाखून बढ़ाना चाहिए क्योंकि उससे
अच्छा
उनके हाथ खूबसूरत होते हैं, मर्द को नहीं, मर्द के लिए मना है। बाज़ लोग है एक आई उंगली का या किसी, ऐसे मर्दों को मैंने बाज़ लोगों को देखा है
लंबे लंबे
कि
रखते हैं जी
थोड़े कर लेते हैं, वो उनके लिए गलत है। جیسے بیوی کے لیے سونا جو ہے وہ بہت مستحب ہے اور شوہر کے لیے حرام,
حرام ہے.
تو بس ناخن کو بھی ویسے ہی سمجھیں کہ اب اتنے نہ ہوں کہ کوئی کام نہ کر سکیں
جی.
یا صرف ناخن ہی کی دیکھ بھال کرنے میں وقت گزر جائے. لیکن جہاں تک انگلیوں کے حسن کا سوال ہے, ہاتھوں کے حسن کا سوال ہے, اس کا خیال رکھنا میں نے معصومین کے اقوال میں دیکھا ہے کہ بہت ضروری اور اچھا مانا گیا ہے, یعنی اس کے لیے کہا گیا ہے کہ ایسا کرو. اسی طرح ایک دوسرے کی تعریف بہت ضروری ہوتی ہے
جی. یعنی آپ بس کہتے کہ ہم تو دل میں سوچ رہتے ہیں,
ہاں دل میں سوچ لیتے تو کہنا وہ نہیں ہے. اس نے کوئی چیز پکائی, اس نے کوئی چیز پہنی, جب آپ اس نے کوئی چیز پہنی تو آپ اسے کہیں اچھا لگ رہا ہے, یا اگر نہیں اچھا لگ رہا ہے تو کہیں نہیں تم یہ نہیں پہن رہی, نہیں اچھا لگ رہا ہے تم پہ. تو بیوی کو محسوس ہوگا یا شوہر کو محسوس ہوگا کہ دیکھو ہمیں اتنی اہمیت دیتا ہے یا دیتی ہے یہ, کہ اسے خیال ہے کہ ہم کس پہ بہتر زیادہ لگتے ہیں, کس پہ اچھے زیادہ لگتے ہیں. یہ چیز بھی ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ ضروری. اسی طرح کاموں کی تعریف, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آج کل کا دور ہے, ہر ایک پڑھا لکھا ہے, تو اگر آپ یہ کریں گے تو اگر بیوی کی آپ نے تعریف کی چیزوں میں تو اس کا دل بڑھے گا. اگر تعلیمی لحاظ سے اس کے, اگر وہ دفتر میں کام کرتی اس کے کاموں کے لحاظ سے, اس کی ذمہ داری کے احساس کے لحاظ سے, کوئی بھی چھوٹی بڑی تعریف, تم پہ یہ لباس اچھا لگ رہا ہے, تم پہ یہ میک اپ اچھا لگ رہا ہے, تمہارے یہ بیٹھنے کا انداز بہت اچھا ہے, چھوٹی سی چیز ایک بار کہہ دینے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کافی چیزیں شرم و حیا کا حصہ بن جاتی ہیں, کافی چیزیں یہ بن جاتی ہیں کہ مطلب ہم لوگ تو یعنی اتنے نزدیک ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ایک دوسرے سے کوئی چیز کہنے. ایسا نہیں ہوتا. یعنی بڑی عمر تک شوہر کو بھی اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور بیوی کو بھی اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے.
ہم لوگ نے ایک اور بات کی تھی, ہم نے کہا تھا خوش اخلاق ہونا چاہیے, اور یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ محبت ہونی چاہیے. بھائی ہمارے ایک ناظر نے, فضا حسین نے بھیجا ہے ہمارے لیے, کہ محبت ہونی چاہیے آپس میں میاں بیوی میں, تو اظہار محبت بھی ضروری ہوتا ہے؟
دیکھیں محبت تو اگر شادی سوچ سمجھ کے کی گئی ہوتی ہے تو محبت تو خدا کا وعدہ ہے کہ جب نکاح ہوگا, جب عقد ہوگا تو میں محبت تمہاری ایک دوسرے کے دلوں میں ڈال دوں گا, ٹھیک ہے نا. اچھا بس ہوتا ہے کم یا زیادہ, وہ تو ماحول اور اس پر ہے کہ بھئی آپ کا خود کا مزاج کیسا ہے, اس سامنے والے کا مزاج کیسا ہے, ساری چیزیں ملا کر. لیکن اس محبت کا اظہار بہت ضروری ہوتا ہے, اور یہ اظہار ہم لوگوں کے ہاں قدیم زمانے میں شرم و حیا کی وجہ سے, اور اب کے زمانے میں جسے کچھ بھی کہنے کی لاپرواہی کی وجہ سے یا جو بھی, کہ اس کی وجہ سے لوگ فلموں میں دیکھتے ہیں انہیں اچھا لگتا ہے, ڈراموں میں دیکھتے ہیں انہیں اچھا لگتا ہے, لیکن خود جرأت نہیں کرتے, نہ مرد نہ عورتیں.
وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے عمل سے اظہار,
عمل سے اظہار, لیکن عمل کے ساتھ الفاظ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں کہ جو محبت خوش اخلاقی. تو میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ خوش اخلاق ہونا چاہیے, باہر کی پریشانیوں کو گھر میں نہ لائیں, اور گھر میں خاندان کی پریشانیوں کو اگر کبھی بیٹھ کے کسی موضوع پر آپ کو مطلب یعنی گفتگو کرنی ہے تو اس کو الگ سے رکھ لیں. یہ نہیں کہ آدمی ہر وقت ہنستا تو نہیں رہ سکتا, مشکلات ہوتی ہیں, لیکن اس کو طاری مت ہونے دیں گھر کے ماحول پر, اور اپنی خوش اخلاقی کو ہر چیز پر حاوی کر دیں. اتنا وہ کریں کہ جیسے بالکل, اور اس کام میں شوہر زیادہ مددگار ہو سکتا ہے گھر کے ماحول کو آ کے ٹھیک کرنے میں. اگر دیکھیں گھر میں بیوی پریشان ہے کسی ماحول سے تو اس کو وہ باہر سے آ کے, لیکن باہر سے وہ چیزیں لے کے گھر میں نہ آئے. اگر وہ پریشان آتا ہے تو اس وقت بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنی خوش اخلاقی سے, اپنی محبت سے اس کی اس تھکن کو مٹائے اور اس کے ذہن کو بٹائے. تو میں عرض کر رہی تھی کہ اظہار محبت بہت ضروری ہے, اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے بالکل سستی کوئی ایسی چیز سمجھا جائے کہ بھائی کیا ہے یہ عشق بازی اور اس طرح کی چیزیں. میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت علی سے گفتگو کر رہی تھی, اسی لیے میں نے ان کے الفاظ نوٹ کیے ہیں. علی جان میری روح آپ کی روح پر فدا, اور میری جان آپ کی جان پر آنے والی بلاؤں کی سپر ہو جائے. یہ محبت کا یہ اظہار ہے الفاظ سے, ان سے زیادہ کون محبت کو یعنی بے شوہر کے لیے وہ کر سکتا تھا. کہتی ہیں بھائی میں تو کر ہی رہی ہوں سارے ان کے ساتھ مشکل. آگے فرماتی ہیں کہ اگر آپ خیر و نیکی میں زندگی گزاریں گے تب بھی میں آپ کے ساتھ ہوں, اور اگر آپ سختی اور بلا میں گرفتار ہوں گے تب بھی میں آپ کے ساتھ ہوں. یا جس وقت آپ کے گھر میں آگ لگائی گئی ہے اور حضرت علی کو لے کے گئے ہیں باہر کھینچتے ہوئے, تو اس وقت آپ نے سلمان سے کہا تھا کہ اے سلمان یہ اس وقت علی کی, یہ لوگ علی کی زندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, میں علی کی زندگی, میں علی کی شہادت پر صبر نہیں کر سکتی, میرا صبر ختم ہو چکا ہے. یعنی یہ الفاظ کیا ہیں, یہ اظہار محبت اگر کسی اور کے سامنے بھی ہے तो मतलब ये नहीं है कि ये कोई गंदी बात है, कोई बुरी बात है, कोई सस्ती बात, ऐसा नहीं है। इजहार मोहब्बत होना चाहिए। आप अपने अगर अल्फाज की अगर आपको आदत नहीं है तो आदत डालें
जी।
और उससे कुछ नहीं, तुम बहुत थक गए हो। जैसे ईरानियों में बड़ा अच्छा तरीका है, शोहर बाहर से आया तो कहते हैं खस्ते ना बाशी, यानी थको नहीं, थके ना रहो, रहो। ये जुमला इनके मतलब कल्चर का, इनके तहजीब का हिस्सा है, खस्ते ना बाशी नहीं है ये
नहीं।
तो आप बहुत थक गए हैं, ये तो कह सकते हैं ना, थक गए होंगे, आइए आराम कर लीजिए। या बीबी बावर्ची खाने से आती, कोई काम करके आती, बहुत थक गई होगी, बैठ जाओ, आओ हम लोग बातें करते हैं, आओ हम लोग साथ में चाय पीते हैं। ये छोटे छोटे जुमले, ये इजहार मोहब्बत जो है, ये जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा अहम होता है और आपकी जिंदगी को बड़ा पुरसकून बना देता है। तो अगर इन सारी चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जाए, तारीफ का, खुश अखलाकी का, एक दूसरे का राजदार रहने का
जी।
एक दूसरे को के जज्बात को समझने का और उसका एहतराम करने का, तो जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ एक मसला कभी खड़ा होता है
जी।
और वो मसला उमन ये होता है कि शादी के बाद, जैसे ईरान में तो अब नए जमाने में ये हो गया है कि पहले लड़का अलग घर ले और फिर वो शादी करे, हाँ। तो फिर बीवी वहीं आएगी, चाहे लड़के की बूढ़ी माँ मौजूद है और उसका कोई देखने वाला
नहीं।
तो यानी या लोग इस हद में आ जाते हैं या उस हद में उस तरफ चले जाते हैं बिल्कुल, कि मतलब हम लोगों क्या है कि नहीं, वो हर हालत में रहना ही है साथ में। जो भी आम तौर से, यानी अभी भी हमारे हिंदुस्तान वगैरह में मेरा ख्याल है 60-70% या शायद ज़्यादा ही घराने ऐसे होंगे कि जहाँ तस्वुर ही नहीं है कि बहू आएगी तो कहीं अलग रह सके
जी, साथ में आता हो सकता है शायद हाँ। किसी और शहर में जाए तो जाए,
हाँ अगर नौकरी कहीं और है, उसकी वजह से कहीं और जाना है तो वो एक अलग बात है, लेकिन उसी शहर में रह के, वरना ये कि लोग क्या कहेंगे, मतलब ये नहीं, इसकी वजह ये है कि सिर्फ झगड़ा हुआ है और इसी वजह से ये है।
मेरा सवाल ये था कि मियां बीवी के जो घरेलू छोटे छोटे झगड़े होते हैं, तरबियत से क्या बुरा असर पड़ता है?
अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारा यहाँ पर जो आपको कॉल करने का, आपसे खुदाफ़ी करते हैं, हम अभी जवाब देंगे आपका जी। कह रहे हैं कि जो छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं,
हाँ,
उसका क्या?
तो उसका तरीका ये होता है कि अगर आप देखेंगे आपकी अपनी गलती को महसूस करने की कोशिश करें, अगर है, अब इन दोनों के लिए मैं कह रही हूँ, मियाँ और बीवी कोई भी, अगर यानी एक उसूल बना लें कि जब एक को गुस्सा आए छोटा या खुदा न खास्ता ज्यादा, दूसरा खामोश हो जाए, तो उससे ये होता है कि बात भी खत्म हो जाती है और उसके बाद सोचने का मौका भी मिलता है और दिमाग में ज्यादा गर्मी नहीं चढ़ती, तो उसकी वजह से फिर झगड़ा छोटे ही झगड़ा जो है वो छोटा ही रह जाता है, वरना बिला वजह की बातों में झगड़ा बढ़ जाता है। और उसके बाद फिर किसी का, मैंने एक मरतबा एक हमारे कोर्स में एक मजमून हुआ करता था कि उसमें मुझे याद है बीबी कि गुस्सा इंसान को आता भी कुछ सेकेंड्स के लिए है, एक मिनट के लिए भी नहीं, सेकंड्स के लिए, लेकिन बाद में वो उसे अपनी अना का मसला बना के बढ़ा लेता है और देर तक उसे बाकी रखता है। जितनी जिसकी जिद, जितनी जिसकी अना ज्यादा होती है, वो सब उतनी देर तक रखता है। तो एक कुछ ऐसे उसूल बना लें कि जब एक, यानी बात कर लें आपस में कि जब कोई एक गुस्से में हो तो दूसरा खामोश हो जाए, तो बात खत्म हो जाती है, और अगर ये नहीं किया तो गुस्सा यानी चीज़ बढ़ेगी। दूसरे ये कि फिर यानी अगर मान लीजिए कि कोई थोड़ी सी नाराजगी हो गई थोड़ी देर के लिए, तो दोनों को चाहिए कि वो पहल करें, क्योंकि पहल करने वाले का सवाब ज्यादा है।
अच्छा, हम लोग अभी बात कर रहे थे न्यूक्लियर फैमिलीज, जहाँ पे जो है मियाँ बीवी अलग हो जाते हैं घर से, और जॉइंट फैमिलीज जो खुसूसन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में देखा जा रहा है कि शादी होकर लड़की आती है और उसे दूसरे और घर वालों के साथ उसी घर में रहना होता है, तो क्या क्या
हमारे मजहब में बड़ी आसानियाँ दी गई हैं, और जो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं उसमें कि जो हमने शायद दूसरे मजाहिब से ली या अपने माहौल से ली या बहरहाल अपनी अना का उसे मसला बना के लिया। मिसाल पे कहीं पे भी, यानी हमने देखा आप मदीने में महल्ले बनी हाशिम था
जी,
महल्ले बनी हाशिम, तो सारे घर नज़दीक नज़दीक मिले मिले, कहीं पर भी एक नहीं है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का आप वाकया कि जब आपको जहर दिया गया तो बुलाया जाता है इमाम हुसैन को, इसका मतलब ये कि उसी घर में नहीं है कि पुकार लिया गया, पड़ोस में कहीं है। तो उससे ये होता है कि आप एक दूसरे के नज़दीक भी होते हैं और दूर भी होते हैं, यानी इस बात पर जोर देना बगैर किसी वजह के कि इसी घर में रहना है, इसका ये होता है कि अच्छा कि मतलब लड़की या जो होती है, जो आती है आपके घर में, बहू आपकी कहीं से आती है, तो अब उसकी प्राइवेसी तो नहीं रही, इसी वजह से ये जो इस्लामी पर्दा है ये भी खत्म हुआ है। एक ही घर में रहने की वजह से, ये तो जेठ हैं, ये देवर हैं, ये देवर का लड़का है, ये जेठ का लड़का है, ये फला का लड़का है, और धीरे धीरे हजादे ही पर्दा कर रही हूँ। ये चीज इसी से खत्म हुई है। अगर लोगों के घर मिले हुए हों, यानी बास घरों में यहाँ पर किसी की फैमिली है कि उसमें वो लोग मुख्तलिफ, यानी एक ही घर है, मुख्तलिफ फ्लोर्स पर मुख्तलिफ बहुएं रहती हैं, बड़ी अच्छी बात है, सब लोग रात का खाना एक साथ खाते हैं,
एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं, लेकिन अलग अलग रह रहे हैं।
अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जब बहू आपके घर आती है तो उस वक्त वालदैन के भी कुछ फरायज होते हैं। अल्लाह ने सास ससुर को, यानी इधर दामाद के लिए और उधर बहू के लिए, इनको महरम करार दिया है। ससुर भी महरम होता है चाहे वो, और सास उधर महरम होती है इनकी। तो इसकी वजह यह कि तुम ऐसा महसूस करो कि जैसे तुम अपने वालदैन के साथ हो। ठीक है, वालदैन हमारे हैं, वालदैन हमारे हैं, लेकिन अगर हमारे शौहर ये समझे कि इनके वालदैन मेरे ही वालदैन हैं, तो हमें अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मदद मिलेगी। इसी तरह उसका, कि अगर बहू ये समझे कि ये वालदैन जो है यूं है, मेरे नहीं हैं, लेकिन शरा ने इनको मेरा महरम करार दिया है और इनका इतना दर्जा दिया है कि दूसरा बाप है मेरा जिंदगी में, तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी पूरी शौहर की मदद करे कि शौहर अपने वालदेन के सिलसिले में जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसके खानदान के सिलसिले में जो जिम्मेदारियां, उन्हें अदा करें। ठीक है, उधर मतलब सास और ससुर का ये फर्ज होता है, खुसूसन सास का, चूंकि ज्यादा बहू का साथ उसका रहता है, कि एक तो ये ना करें कि बात को मर्दों में ना पहुंचने दें। कोई नाराजगी भी हुई अगर, तो उसको सास को ये नहीं चाहिए कि फौरन शौहर से बयान करे,
वो उसने ये कर दिया
उसने, तो होता क्या है कि मर्द क्योंकि ज्यादा उससे लड़ नहीं सकता, उसे ज्यादा उससे साथ नहीं रहता, तो उसके दिल में कुदूरत बैठ जाती, बहू से नफरत बैठ जाती, तो फिर वो बाप और बेटी वाला जज्बा नहीं रह जाता
जी।
तो इसलिए एक तो ये इन मसाइल को अपने पास रखे, दूसरे ये समझे कि उसकी अपनी बेटी है, हर वक्त उसके कामों को जेर नजर रखना, हर वक्त वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ये ना करें, उसे आजादी दें, उसकी प्राइवेसी का एहतराम करें, तो ये मसाइल पेश नहीं आएंगे। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि बहू जब नए घर में जाए तो उससे पहले अगर वो बात कर ले होने वाले शोहर से, और उस वक्त वो अपनी समझ ले कि घर में क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, अगर साथ रहना है तो क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, तो उन जिम्मेदारियों के लिए जहनी तौर पर खुद को आमादा करके जाए। इधर जब लोग बहू ला रहे हों तो उनको ये सोचना चाहिए कि वो इनकी बेटी की तरह है, खुदा ने इसे महरम करार दिया है, तो उसके ऊपर एक जासूस बन के या उसकी हर चीज़ों में मुदाखलत करके अपने बड़प्पन की को जाहिर न करें, बल्कि उससे मोहब्बत करके अपनी बड़ाई के लिए अपनी बुजुर्गी का एहतराम करवाएं और उसकी मदद करें जिंदगी को बेहतर बनाने में। अगर शोहर मोहब्बत करता है तो कोशिश करें कि दोनों के दरमियान मोहब्बत ज्यादा बढ़े, तो इस तरह से बहुत आसानी से एक ही घर में रहा जा सकता है। एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखें कि ऐसा हो कि हर वक्त अगर वो सर खुला रखना चाहती है, बाहिजाब है, सर खुला रखना चाहती है, तो उसके लिए एक ऐसा अलग कमरा हो, जगह हो कि जहाँ वो आराम से रह सके, और अगर ऐसा नहीं है तो इजाजत दें अलग घर रखने।
अच्छा, यहाँ पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमारे पास वक्फा है। यहाँ पर एक ये भी चीज़ होती है कि जब मियाँ बीवी जो होते हैं उनमें अगर कोई चीज़ कोई झगड़ा या मसलन कुछ होता है तो घर वाले उस पर जो है बहुत ज़्यादा उसमें दखल अंदाजी,
एक तरह से मुदाखलत किसी शक्ल में ना करें, सिवाय इसके कि अगर ऐसा कोई खुदा नखास्ता मसला पेश आता है तो दोनों की बात अलग अलग सुने और फिर उन्हें समझाने की कोशिश करें कि इस सिलसिले में क्या होना चाहिए, हवा देने की कोशिश ना।
चलिए, इंशाल्लाह हमारे नाज़रीन को आपकी खुद को अगर कुछ और आप कहना चाह रही हूँ।
बस यही कि हमारे यहाँ बहुत छोटी चीज़ें हैं जिन्हें बहुत बड़ा बना लिया गया है, और यानी इनकी कोई ख़ास अहमियत नहीं होती। अगर हम चाहें और हम अपने पे थोड़ा काबू रखें और हम खुदा को हर वक्त मद्देनज़र रखें कि हमें सास की हैसियत से या बहू की हैसियत से या बेटी की हैसियत से हमारे फ़राइज़ क्या हैं, हम उन पर देखें, उन पर नज़र रखें, अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करें बजाय इसके कि सामने वाले को दुरुस्त करने की कोशिश के, तो उससे माहौल बहुत बेहतर बनेगा। मोहब्बतें बांटें तो आपको इज्जत भी मिलेगी, एहतराम भी मिलेगा, मोहब्बत भी जवाबन मिलेगी। ये मैं दोनों तरफ के लिए बात कर रही हूँ, चाहे वो बहू हो या दामाद हो, सास ससुर इधर के हों या सास ससुर उधर के हों, ये सब के लिए यह कानून है कि मोहब्बत बांटें, एहतराम हासिल करें।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। इजाज़त चाहते हैं आपसे, खुदा हाफ़िज़ करते हैं। اور ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو گفتگو پسند آئی ہوگی، ویسے یقیناً پسند آئی ہے، جس طرح سے آپ کے میسیجز یہاں اچھے اچھے آ رہے ہیں، دولت باقری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اسی طرح فدا حسین صاحب ہیں، اعجاز تنویر صاحب ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ جو جو چھوٹی چھوٹی قدورتیں ہیں یا جو جھگڑے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں، اور اگر آپ کوئی نئی زندگی شروع کر رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے کریں، اور یہ سوچیں کہ راستے میں جو تھوڑی بہت مشکلات تو ہوتی ہیں، اگر آسانیاں آسانیاں تو پھر وہ زندگی کہاں کہلائے گی۔